कुछ तो कहिए ना।
कहो ना कहो,
कुछ तो चाहो।
बोलती है ओ सनम, ओ सनम।
कुछ कहिए ना,
मेरे सनम।
कुछ तो आखो,
सफर में ये सहारा है।
कोई गाल करो ना जी,
साहलों का ये किनारा है।
लिखो से हुआ आया।
कहो ना कहो,
ओ कोशिश तो आखो।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज़। हमारे आज के प्रोग्राम में मेहमान ज़रा सा, यानी शायद 5 मिनट ड्राइव कर रहे हैं कहीं पर, तो चलिए हम सरप्राइज़ रखें उनकी आमद को उस वक्त तक, सिवाय उन लोगों के जो फेसबुक पर देख चुके होंगे। तो चूँकि कुछ वक्त है तो हमारे जो कॉलर्स हैं इस वक्त लाइन पर, उनसे हम बात करते हैं। ज़फ़र इकबाल बिहाड़ी से। जी ज़फ़र साहब,
अस्सलाम वालेकुम बाजी।
जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप
बाजी? आज यहाँ में पाकिस्तान है जी, आपको भी और बाजी नीलूफर मुगल साहब को और आप तमाम जो हमारे भाई बहने अमेरिका में हैं जी, यहाँ में पाकिस्तान मुबारक हो बाजी।
बहुत आपको भी,
पूरी कौम को भी मुबारक हो जी बाजी।
तो क्या किया आपने आज इस दिन के मौके पे?
आज ही तकरीबात हुई शहर में, लोगों ने मतलब फ्लैग लगाया और फूलों की नुमाइश हुई हमारे शहर में, तो बहुत अच्छी।
अच्छा
जी,
फूलों की नुमाइश होती है कहाँ पर, किस जगह होती है
ये? हमारे बिहाड़ी में ना जी,
वो
जी ये चांदनी पार्क है जी, खवातीन के लिए मखसूस है जी।
अच्छा,
या उसमें बहुत जबरदस्त, बहुत अलग, तमाम इदारों ने शिरकत किया बाजी।
हाँ।
तो वो समा देखने के लायक था जी बड़ा।
तो जफर, तो आप खवातीन के पार्क में क्या कर रहे थे?
नहीं वो तो आज वहाँ तो आम जाती है ना। नहीं बाजी, वो आपने फरमाया ना किस जगह पे।
नहीं नहीं, मैं वैसे ही मजाक कर रही हूँ, मुझे जाहिर है कि आज नुमाइश हुई होगी वहाँ पर, तो इसलिए आप
फूलों की नुमाइश वहाँ होती है जी, तो वो लोग विद फैमिली जाते हैं जी उधर।
तो कभी कभी आपको छेड़ना भी तो चाहिए ना
जी बाजी,
कभी कभी हमें भी तो आपको छेड़ना चाहिए
बाजी। वेलकम जी, आप इधर तशरीफ लाएंगे, आपको इधर तो आप जब आएंगे तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप कितने मकबूल हैं जी अवाम में जी।
बहुत शुक्रिया। बस
मेहमान मेरा ख्याल में आज मेहमान से हमारी बात पहले कॉलर की ना हो सकेगी शायद।
मैं चलिए मेहमान का नाम बता देती हूँ आपको, ताकि आप सवाल पूछ लें अपना, है ना। एजाज दुरानी साहब है मेहमान हमारे आज, हीर रांझा वाले। तो कोई सवाल है उनके लिए?
एजाज दुरानी साहब से उनका शोभा बाजी
फिल्म के भाई, हीर रांझा फिल्म, हीर रांझा वाले एजाज।
अच्छा वो एजाज साहब।
हाँ।
अच्छा तो मुझे तो हीर रांझा में ना जी,
हाँ।
वो जो कैदो का किरदार था ना जी,
हाँ।
वो अक्सर मतलब है कि देखने में आते हैं, अल्लाह करे कोई कैदो हकीकत में ना बने जी। तो जो है ना वो अच्छा करेक्टर इंसान का होना चाहिए जी।
बिल्कुल सही बात है।
कोशिश करेंगे जी बाद में कार मिलाने
की।
चलिए को बाजी मेरा सलाम जी, अल्लाह हाफिज़।
वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़। दायम अली शर बलोच जी, दायम सलाम अलैकुम।
अस्सलाम वालेकुम,
कैसे हैं भैया?
वालेकुम अस्सलाम बाजी, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब तो आपका फोन बड़ी जल्दी मिल जाता है, मैंने देखा।
ये तो बात है, लेकिन ये बात जो मेहमान से बात नहीं हो सकी, और मेहमान से ये अर्ज करते हैं कि, और आपसे भी अर्ज करते हैं कि इमरान जाकर कोई कलाम सुनाए, और सिर्फ फिल्म का जो अच्छा सा कलाम हो वो भी सुनवा दें।
अच्छा ठीक है, सही है, इमरान जा का कोई गीत सुनवाएंगे।
अर्ज है मेरा
जी,
के सिंध का एक सूफी गायक है मांझी फकीर।
अच्छा,
बहुत उस पे थीसिस लिख रहे हैं, वो उस पे PhD भी हो रही है, PhD का भी वो उस पे लिखते हैं, कोई बड़ा फनकार है। मैं अर्ज करता हूँ कि कभी उसको भी जो है टाइम में आपके शामिल करें।
दायम आप एक काम करें, एक आपके जिम्मे करती हूँ, उनका टेलीफोन नंबर कोई कांटेक्ट ढूंढ के मुझे दीजिए, ठीक है?
उसका है एक दोस्त है हमारा, वो उसके पास उसका फोन नंबर है, मैं उसका फोन नंबर दूंगा, तो फिर वो देखे कि कितना फनकार है, बड़ा फनकार।
बस
है।
आपका, आपकी फरमाइश फौरन पूरी हो गई, और आप नंबर दीजिए और उनको हम ले लेंगे। अच्छा चलिए, अब हम आपका सवाल पूछ लेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। और सामीन, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। आपके चाहने वाले आपसे पहले ही आ गए, तो मजबूरन मुझे आपका नाम अफशा करना पड़ा, लेकिन मैं हमेशा पहले शुरू में एक झलक सुनवाती हूँ, तो चलिए मैं आपकी आवाज़ की एक झलक सुनवाती हूँ लोगों को पहले।
कि तेरा प्यार हकीकी प्यार दा दुनियावी रूप है, असि आशीर्वाद नहीं देंगे। झूठे आशक जोग दे कशक निकटते गुरु जी, जोग दी जिस पट्ठी विचों मैं तप के निकलिया, इन्हों विचों किन्ने को उस पट्ठी विच पे ने, जिस मंजिली नूं तुसां अवस्थी वंजली कह के तोड़े, ओदे सुर मेरे टूटे हुए दिल की पुकार सी। ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਸ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਵੰਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹੂਕਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਖਲ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
क्या खूबसूरत फिल्म थी एजाज साहब, आज भी इसके गाने सुनो, इस फिल्म को देखो। मेरे ख्याल है बहुत कम फिल्में इतनी मकबूल हुई होंगी जैसी हीर रांझा फिल्म थी।
जी
तो आपकी
फिल्म जो है
जी,
ये जो फिल्म है जो देखें तो बड़ी परफेक्शन के साथ बनी हुई है, इट्स वेरी रियल यू नो।
तो इसकी क्या कामयाबी का राज क्या था?
इसकी कामयाबी का राज था कि जो पूरी टीम थी ना,
जी जी
पूरी टीम ने, सब ने, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो उसमें शुरू से ही फैसला ये किया कि इस पिक्चर को, कई दफा पहले बन चुकी है ये पिक्चर, रोमांटिक पिक्चर है ये, फोक कहानी है, और कई दफा बन चुकी है ये।
जी हाँ बिल्कुल।
अभी इसको बनाने का जब सोचा तो जाहिर है कई दफा लोगों ने पहले भी देखी होगी हीर रांझा, तो उसको सोच के फिर कलर का जमाना, पहले पिक्चर बनती थी ब्लैक एंड व्हाइट की
जी,
ये पिक्चर कलर बनी फर्स्ट टाइम यू नो।
अच्छा ये पहली कलर पिक्चर थी पंजाबी में या पाकिस्तान में ही पहली फिल्म थी?
पाकिस्तान में और भी पिक्चर शुरू हुई कलर में, उस दौर में शुरू हुई जब ये हमने पिक्चर शुरू की।
अच्छा अच्छा,
ये शुरू शुरू का कलर है, इट्स नॉट ए इंस्ट्रूमेंट कलर, एक ऑर्डिनरी कलर है, वो यूज हुआ है नेगेटिव इसमें। ये स्टार्ट द बिगिनिंग थी ना हम फिल्म इंडस्ट्री की कलर पिक्चर्स के लिए।
अच्छा
तो उसमें फिर ये था कि हर चीज का ख्याल रखा गया, उसके स्टूडियो का भी, उसके ड्रेसेस का भी, उसके आर्टिस्टों का भी, उसकी जो भी सिलेक्शन थी, जितने लोगों ने काम किया आर्टिस्टों ने, करेक्टराइजेशन बड़ी प्रॉपर परफेक्ट हुई, म्यूजिक का बहुत उसको बड़ी खुशी, जनवर साहब का म्यूजिक था खासी उस पर मेहनत की गई, अहमद राई साहब उसके राइटर थे, बहुत बड़े राइटर थे वो, कहानी भी उनकी थी और सॉन्ग्स भी उनके लिखे हुए थे
जी।
इस तरह तो ये एएम स्टूडियो में और एवेन्यू स्टूडियो, दो स्टूडियो में ये पिक्चर बनी है।
अच्छा यह सब आपके लिए जाहिर है कि आप रांझा के किरदार में तो जो हिट हुए वो हुए, लेकिन आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, तो ये बताइए कि फिल्म जब बनती है तो उसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो होता है उसके रोल में क्या फर्क होता है फिल्म बनाने में, क्योंकि आप प्रोड्यूसर थे तो आपका क्या रोल था उसमें?
उसमें यह है कि जो प्रोड्यूसर है एक्चुअली इज द मैन, जो भी कोई पिक्चर बनाता है उसका जो प्रोड्यूसर है वो मैटर करता है कि क्या कहानी की उसकी सिलेक्शन है, क्या लोगों की उसकी सिलेक्शन है, समझे ना, तो वो फिर प्रोफेशनल लोग उसी कहानी के हिसाब से उसमें कास्ट करता है और सारे फिर मिल के फिर उसका रिजल्ट जो है ना, इस तरह आर्ट डायरेक्टर है, ड्रेसेस की है, जो टेलर मास्टर है वो भी प्रॉपर होना चाहिए।
अच्छा
उसे सारी चीजें उसमें है, अगर आप पिक्चर देखें तो उसमें जो गाने भी डांसेस भी जो है, क्योंकि हीर जो है वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है, उसकी बेटी है, तो उसने डांस इस तरह नहीं किया जैसे पंजाबी पिक्चर में हुआ करता था
जी।
आप अगर पिक्चर को देखें तो उसी हिसाब से उसी तरीके से ही डिसेंट वे पे सारे गाने हैं, पूरी पिक्चर के स्लो मूवमेंट के गाने हैं, फास्ट मूवमेंट आई नहीं उन गानों में, ऑल द सॉन्ग।
यही तो मुझे फिर अफसोस होता है देख के कि जो एक स्टेरियोटाइप बन गया कि पंजाबी फिल्म लाउड होनी चाहिए, मगर आप ये देखिए कितनी रोमांटिक, कितनी धीमी फिल्म थी, कोई चीख पुकार नहीं, शोर, और जाहिर है कैदू का किरदार तो है एक विलन का किरदार और होना चाहिए कहानी में, लेकिन वो भी उस तरह का नहीं, भड़के मारने वाला नहीं था वो भी तो। अच्छा चलिए हम अपने कुछ कॉलर्स को ले लें। ज़फ़र इकबाल विहाड़ी से आए थे, उन्होंने इसी पे कैदू के किरदार पे बात की थी, और दायम अली शर बलोच हमारे साथ थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने बहुत ही रांझा को पसंद किया था। एक और हमारे कॉलर ने, साजिद हुसैन ने जो आपकी बड़ी मेरा ख्याल दुखती हुई रग होगी जो सवाल पूछा है उन्होंने, उन्होंने ये पूछा है कि सज्जाद ने कि ये फिल्में, क्या फिल्म इंडस्ट्री कभी अपना वो मकाम हासिल करेगी जब हीर रांझा जैसी फिल्में बनती थी और आपने सैकड़ों फिल्में बनाई और इस तरह के आप और आपकी तरह के बहुत से।
देखिए वो जो जमाना था जब हमने ये पिक्चर शुरू की बनाई ना, तो उस वक्त हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था कि इंडिया पिक्चर बनाता है, हमें पिक्चर कैसे बनाए। नहीं, हमने चाहा कि हमारी जो अपनी इंडस्ट्री है उसको डेवलप करेंगे, अपनी पिक्चर बनाएंगे, हम किसी के मोहताज नहीं होंगे। सो सारी जो इंटायर इंडस्ट्री थी उसमें नए लोग आए, नए एक्टर्स भी आए, नए डायरेक्टर्स भी आए, पुराने लोग भी आए, बड़े एक्सपीरियंस लोग भी आए, सब ने मिल के बड़ी एफर्ट्स की और बेशुमार पे हम इस स्टेज पे पहुंचे कि एक साल में हम 120 पिक्चरें बनाते थे। 5 पिक्चरें एवरेज थी हमारी, पिक्चरें एवरी वीक रिलीज होती थी।
अच्छा,
तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये शुरू का पीरियड था जिसमें इंडस्ट्री को ग्रेजुअली डेवलप भी किया गया, नए स्टूडियोज भी बने, बेशुमार पिक्चर जो है लॉन्च हुई। तो स्टूडियो के अलावा जितने सिनेमा घर हैं वो मुख्तलिफ जगह बने, कराची बने, लाहौर बने, हर शहर में सारे सिनेमा गए, क्योंकि पार्टीशन के टाइम इतने सिनेमा नहीं थे, तो काफी सिनेमे बाद में बनाए गए, अच्छे पच्चीस छब्बीस छब्बीस सिनेमे एक शहर में भी बने, लाहौर में और पिंडी में, मैनपुर में।
तो एजाज साहब आपने कुल कितनी फिल्मों में काम किया होगा? टोटल सैकड़ों फिल्में आपकी मैं देख रही थी।
मेरा ख्याल है 200-250, वो आप कंप्यूटर में अगर जाए तो वहाँ से पता चल जाएगा आपको
कौन
सी फिल्म आई है।
वहाँ भी उन्होंने बहुत लंबी लिस्ट दी है लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि सैकड़ों फिल्में हैं आपकी। अच्छा, अभी सज्जाद का सवाल हमने पूछा था, साजिद हुसैन जिंदानी ने ये पूछा है कि आगाज कैसे हुआ आपके करियर का, किस तरह शुरू हुआ ये?
मेरा ख्याल है कि जहाँ तक आगाज का ताल्लुक है या किसी न किसी इंटरव्यू में डेफिनेटली होगा उसमें, तो मैं उसमें नहीं है या मैं आपके पास कंप्यूटर में किसी के पास डेफिनेटली होना चाहिए था, होना होगा डेफिनेटली। खैर नहीं हो, आपने सवाल किया मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। ये शुरू में जो जिस पिक्चर मैंने काम किया, मेरा कोई शौक नहीं था फिल्म में काम करने का।
अच्छा।
एक्चुअली एक कहानी थी जो दो प्रोड्यूसर्स ने कंपटीशन में बनाई, एक ही सब्जेक्ट दो प्रोड्यूसर्स ने अलग अलग बनाया। तो उसमें ये था कि जो पहले पिक्चर जाहिर है बनाएगा, कहानी बड़ी अच्छी थी, एक ही कहानी थी।
अच्छा।
कहानी अच्छी थी, जो पहले बनाकर रिलीज करेगा, ये कंपटीशन हो गया दो पार्टीज में। अब वो डे नाइट शूटिंग होती थी, उसमें उसके लिए आर्टिस्ट चाहिए थे, नए लोग भी चाहिए थे, पुराने भी चाहिए थे। तो उसमें ये मेरा कॉलेज जहाँ मैं पढ़ता था उसका उसे कहते हैं लक्ष्मी चौक।
अच्छा।
उसमें मेरा दयाल सिंह कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ता था
जी।
तो दयाल सिंह कॉलेज जो है उसके सामने रेस्टोरेंट थे जिसमें कि फिल्म के लोग अमूमन चाय पीने के लिए जाते थे।
अच्छा।
हम लोग भी लड़के जितने भी हैं चाय पीने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाते थे, तो मिलते थे, देखते थे हम लोगों को ऑल दैट ना। तो किसी चीफ असिस्टेंट ने देखा हुआ था मुझे, तो मैं चाय पी रहा था अपने दोस्त के साथ, तो उसने कहा कि अरे एक रोल है छोटा सा है फिल्म बनने के कम्पिटिशन में, अगर आप काम करना चाहें। मैंने कहा मेरा तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो मेरे दोस्त थे बैठे हुए उन्होंने कहा, मुझे खामोश करा दिया, उसने क्या बात करे, उससे कहा नहीं करेंगे जी, करेंगे आप, ऐसी कोई बात नहीं। तो जबरदस्ती उन्होंने उससे टाइम करके, तो ये माल रोड के ऊपर एक स्टूडियो था जहाँ ये फिल्म शूट हो रही थी।
अच्छा। और तो फिल्म कौन सी थी? आपने नाम नहीं लिया फिल्म का अब तक, कौन सी फिल्म थी
उसके? फिल्म का नाम था हमीदा।
अच्छा।
मुंशी दिल साहब इसके डायरेक्टर थे
जी,
और हमीदा जो है उसका नाम था पिक्चर का। तो वो स्टूडियो चले गए, फिर वहाँ जो डायरेक्टर साहब से उन्होंने कहा कि यार ये तो अच्छा है लड़का, अगर ये काम करे तो सो मच बेटर। खैर उन्होंने मेरे दोस्तों ने मजबूर करके मुझे काम उसे करवा ही दिया, इस तरह हुआ। मेरा मेरे को ऐसे ही कोई शौक नहीं था।
अच्छा।
तो वर्क इन द फिल्म से ना एक हादसा है जिनको,
लेकिन अच्छा लेकिन हादसा बुरा नहीं था, यह हादसा अच्छा था। अच्छा, मोहम्मद सरफराज हमारे कॉलर हैं और उन्होंने जो सवाल लिखा है, बल्कि मैं आपसे उसमें एक जुमला है जो मैं बात पूछूंगी आपसे। उन्होंने लिखा है, खूबरू हीरो थे जिनकी फिल्में हमारे दिलों पर राज करती थी, उनसे सवाल यह है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी फिल्मी ज़िंदगी से किस हद तक मुतासिर हुई और मैडम नूरजहाँ ने क्या किरदार अदा किया? ये तो इनका सवाल है, मगर ये खूबरू मतलब बहुत सारे हमारे खूबरू हीरो थे, आपको ये खिताब क्यों दिया गया?
یہ تو خیر لوگ جو ہے نا وہ یا پیپر والے جو ہے وہ خطاب دیتے ہیں یا لوگ جو ہے وہ اس طرح کے خطاب دیتے رہتے ہیں. میں میرا ایٹیچیوڈ ہمیشہ بڑا ریئلسٹک رہا ہے آلویز
ٹوڈ
مائی کیریئر یو نو بڑا ریئلسٹک میں نے نارمل ہیومن بینگ یو نو
جی جی
اس طرح میں نے لیو کیا ہے اور ویسے بھی نیچر تھی میری تو جہاں تک میرج کے تعلق ہے دو شادیاں ہوئی ایک پہلے میں نے کی ایک بار دوسری شادی میں نے کی تین بچیاں پہلی بیوی سے ہیں تین بچیاں دوسری بیوی سے بھی ہیں
تھینک
گاڈ میری ریلیشنشپ جو ہے بڑی اچھی اچھا وقت بہت گزرا ہے آل دیٹ بچے جو ہیں چھ میرے چھ بچے ہیں بیوی میری ہے دو جہاں کی تو ڈیتھ ہوگی آپ کو پتا ہوگا
جی جی
تو میں آئی ہیو نو ریگریٹس اباؤٹ اٹ
اور میرا خیال ہے آپ کی ریلیشن شپ بہت اچھی ہے اپنے بچوں سے جو بڑی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو فیملی لائف کو کبھی متاثر نہیں ہونے دیا. اچھا
ابھی میں اس وقت جو ہے نا یہاں کراچی میں ہوں
جی
میں لاہور میں نہیں ہوں یہاں بچے ہیں میری دو بچے ہیں یہاں پہ ہیں تو آئی ایم ہیئر ود دیم یہاں رہوں گا ایک مہینہ دو مہینہ پھر چلے جاؤں گا لاہور چلا جاؤں گا باہر چلا جاؤں گا امریکہ چلا جاؤں گا کبھی آسٹریلیا چلا جاتا ہوں اس طرح میں گھوم پھر کے جو ہے نا اپنا ٹائم پاس کرتا ہوں.
ویسے جیسا میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی میں بھول گئی تھی مجھے پہلے ہی کہنا چاہیے تھا کہ آپ ایک شادی میں ویسے بھی مدعو تھے اور وہاں سے آپ ہم سے بات کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ. ویسے روشنی واپس آ چکی ہے کراچی میں ابھی تک اندھیرا ہے بجلی گئی ہوئی تھی نا پہلے جب آپ نے بات ہوئی تھی میری تو بجلی نہیں تھی شاید
بجلی تو تھا آپ یقین کریں گے میں ابھی یہ شادی ہے یہاں سامنے میں
جی
یہ کریک کلب ہے یہاں کراچی میں ڈیفینس کے ایریا میں ہے
جی
اور یہ یہاں پہ میں مجھے انوائٹ انہوں نے کیا ہوا ہے میں یہ باہر بہت بڑا یہاں گراؤنڈ ہے اس میں میں بیٹھا ہوں بیٹھ کے تو آپ سے بات کر رہا ہوں آئی ایم ناٹ انسائیڈ یو نو.
بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ باہر مچھر نہیں ہوں گے ویسے کراچی میں مچھر کافی ہیں.
بڑی اچھی آواز چل رہی ہے بڑا اچھا موسم ہے ساری لائٹیں اراؤنڈ لگی ہوئی ہیں نا رونق لگ رہی ہے
بس
میں بھی ادھر گیا نہیں ہوں
اب بجائے ڈنر کے اس وقت کینڈل لائٹ چیٹ
تو میں نے کہا اس کی جگہ میں اگر وہاں چلا گیا تو وہ بھی پھر مجھے نکلنا پڑے گا بہتر یہی ہے کہ میں بھی ادھر سے آپ کا فون آ گیا ٹھیک ٹائم فون آ گیا آپ کا
جی تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ لائن پوری موجود ہے آپ کے جو فین ہیں ہمارے اس پہ ٹیلی فون پر اب ڈاکٹر اقبال ہیں سرگودا سے جی ڈاکٹر اقبال السلام علیکم ڈاکٹر اقبال
ہیلو
جی جی السلام علیکم
السلام علیکم میں سرگودا سے ڈاکٹر اقبال عرض کر رہا ہوں
جی
اعجاز صاحب کی بہت سی فلمیں میں نے سنی ہیں کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا سنتا رہا ہوں مجھے سوال یہ کرنے میں ایک انگریزی ادب اور اردو ادب کا ویسے ٹیچر بھی ہوں کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی ہماری یہ فلمیں ہیر رانجا سونی مہوال یا جیسے انگریزی میں رومیو اینڈ جولیٹ کیا یہ ہماری جو رورل کلچر ہے اس کی کس طرح سے ریپرزنٹیشن کرتی ہیں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ان نیچرل ان یوزلی رومانٹک ہوتی ہے تو اسے آپ کس طرح آپ لائف کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ جاز صاحب تو بہت اردو بول رہے ہیں اردو اسپیکنگ مجھے نظر آتے ہیں اور یہ پنجابی ڈائلاگ بڑی خوبصورتی سے ادا کیا یہ بھی ایک بڑا کمال ہے ان کا.
مجھے تو اعجاز صاحب کے نام سے لگتا ہے کہ شاید پشتو اسپیکنگ ہے یہ کیوں اعجاز صاحب.
بات یہ ہے کہ پنجابی میری لینگویج ہے
جی
اردو بھی میری لینگویج ہے انگریزی بھی میری لینگویج ہے تو ایک ایکسپریشن ہے تو میں پنجابی بولنا شروع کر دیں گا
جی.
ویسے نا ہیرا دادا یہ وارث شاہ کی جو کتاب ہے وارث شاہ کا جو سارا افسانہ ہے کتاب ہے شاعری ہے اپنے آج سے 200-300 سال پہلے تو وارث شاہ جو گزرا ہے اس نے اس کی شاعری ہے اس میں اور اس میں ایسی ایسی حالات کے مطابق انہوں نے ایسے ایسے شعر کہے ہیں جو اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے
جی.
لکھنے کا تو زیادہ رواج نہیں تھا یا پڑھنے کا رواج نہیں تھا 200-300 سال پہلے تو یہ کہانیاں فوک کہانیاں ہیں یہ شروع سے ہی ہیں
اور یہ تو زمین سے بہت جڑی ہوئی ہیں جو ان کا سوال تھا تو یہ تو زمین سے ہی نکلی ہوئی کہانیاں ہیں بالکل تو ان کا تو زندگیوں سے گہرا تعلق
ہے. یہ فوک کہانیاں ہیں
جی
اور ہر ملک میں اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے تہذیب ہوتی ہے ان کی اور کہانیاں ہوتی ہیں
بالکل
دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے
بالکل. اچھا ایک اور کالر ہے صاحبان سے محبوب علی جی محبوب علی صاحب
بسم اللہ کریے باجی جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی
کی حال باجی جی
بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں.
जी मैं भी बिल्कुल बाजी ठीक हूँ, तो हम इजाज़ भाई को भी बहुत बहुत सलाम कहेंगे।
वालेकुम अस्सलाम,
बड़ी मेहरबानी
जी। ताबेदार जी, इजाज़ भाई कैसे हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस दुआ है ताड़ी बस
जी। साड़ियां दुआवां सवा लाख ताड़े ना, तो मेरा ख्याल है कि तुम चाय ज्यादा पसंद कर रहे हो।
अच्छा, ऐसा है कि अगर आप उर्दू में पूछ लें तो हमारे सारे सुनने वाले समझ सकेंगे उसको, आपके सवाल को, क्योंकि बहुत से लोग ज़ाहिर है पंजाबी नहीं समझेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं। जी मैं क्या महबूब साहब, सवाल क्या आपका?
महबूब जी, हम तो इजाज़ साहब से बड़ा प्यार करते हैं
जी, 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 जी।
और मेरा ख्याल है कि ये पंजाबी में भी इनको बोलना चाहिए थोड़ा थोड़ा।
पंजाबी की आप इनकी फिल्म देखिएगा, इस वक्त ये जो मुखातिब हैं तो ये सारी फिल्म लोगों से मुखातिब हैं, तो ऐसी बात जी।
हाँ जी, तो हम जी इनको दो चीजें वो सुनाना चाहेंगे अगर इजाजत हो बहन आपकी। तो
क्या सुनाना चाहते हैं?
वो जी हम इजाज़ साहब चाय पे बात कर रहे तो ऐसी कहेंगे पिंडी तो चाह पीती तेरिया मन मन के हमें जिंदगी तबाह की, कोई पकड़ी चाह पीवा इजाज़ साहब जग ते तू जी में तेरी आस ते मैं।
मेरा ख्याल है कि तो ये थे महबूब अली साहब साहिवाल से, और हम आपकी एक और फिल्म की तरफ चलते हैं, उसकी भी प्रोडक्शन आप प्रोड्यूसर आप हैं, फिल्म दोस्ती, मेरा ख्याल है वो आपकी बहुत पसंदीदा फिल्म भी है, तो लीजिए उससे थोड़ा सा एक टुकड़ा
जी।
तनख्वाह मुबारक हो, पूरे 11 पाउंड हैं, आज मैं भी मिठाई खाऊं।
खाओ खाओ
बट जी, हफ्ते में 11 पाउंड हुए, साल में कितने हो जाएंगे?
बहुत हो जाएंगे। ये बता, तेरा काम तो पसंद आया?
बहुत, सुपरवाइजर बहुत अच्छा आदमी है, सलाह देते वक्त शाबाश दी और बोला वेल बॉय डोंट कम टुमारो।
डोंट कम टुमारो?
हाँ।
अरे तुझे तो जवाब हो गया।
जवाब? जब ही वो साला मुझे देखकर सर लाता था, मैं समझा उसकी आदत है।
खैर कोई बात नहीं, 5 पाउंड नौकर करवाने के, 4 पाउंड किराया, और ये तुम्हारा।
मगर बच्ची मैंने तो बहुत मेहनत से काम किया है,
यहाँ पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इस मशीनी दुनिया में मशीन का पुर्जा ही बनना पड़ता है, घबराओ नहीं, कोई और काम ढूंढेंगे तुम्हारे लिए।
तो एजाज साहब, ये भी एक बड़ी मुख्तलिफ सी कहानी थी, और आपने उस जमाने में बाहर जाने वालों के अलमिये पे बात की थी, जब इस बारे में मेरा ख्याल है इस तरह की फिल्में नहीं बनती थी, बहुत ही रेयर शायद कोई फिल्म बनी हो।
हाँ, क्योंकि उस वक्त रुझान ये था आफ्टर पार्टीशन, काफी लोग जो है ना ब्रिटेन इंग्लैंड में जो जाते थे जॉब्स के लिए ना, मीरपुर खास से, मीरपुर से पंजाब से, एरिया से लोग बाहर जाते थे इस शौक में कि वहाँ जॉब मिली है ऑल दैट। तो इंडिया से काफी लोग जाते थे पिक्चर बनाने के लिए, तो मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि वहाँ पे मैं भी पिक्चर बनाऊँ, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आया। तो ये ऐसा सब्जेक्ट था कि जो लोगों के लिए जरूरी था देखना कि यहाँ से कल्चर छोड़ के जब दूसरे कल्चर में आप जाते हैं, उनका तौर तरीका जब देखते हैं, और बच्चे उसमें शादी करते हैं या लिव कर रहे होते हैं किस तरह उनके कल्चर के हिसाब से, तो बड़ा तजाद था, बड़ा फर्क था ना जमीन आसमान का।
जी बिल्कुल,
वो मैं दिखाना चाह रहा था कि लोग किस तरह वहाँ पे जाके बाद में परेशान होते हैं, और अगर शादी हो जाए तो जाहिर है वहाँ की शादी और बात थी, यहाँ जो हमारा एरिया है सारा साइड पे अपना आजाद कश्मीर साइड पे भी बहुत खूबसूरत है, वहाँ भी खूबसूरती है, यहाँ भी खूबसूरती है, यहाँ लोग बड़े सिंपल थे, जो थोड़ा बहुत काम किया खेती बाड़ी की, कमाते थे खाते थे, लेकिन बड़े खुशहाल थे। वहाँ की जिंदगी टोटली डिफरेंट थी, वहाँ जाके एक 8-8 आदमी एक ही कमरे में सो रहे हैं, और डे में नाइट में काम कर रहे हैं, बीवी भी काम कर रही है, बियाँ भी काम कर रहा है,
तो
गुजारा तो नहीं हो सकता था। That was a different culture altogether, you know.
और ये भी है, मैं वही वाला टुकड़ा देख रही थी,
लोगों को
जी हाँ के ग्लैमर नहीं है, उसमें बड़े दुख भी है उस जिंदगी में, बहुत उसको आपने अच्छी तरह पोर्ट्रे किया, बहुत अच्छी फिल्म थी। अच्छा हम कॉलर ले लेते हैं, और वैसे उससे पहले बता दूँ कि जहूर सोलंगी ने और गुलप्रीत शेरगिल ने इन्होंने पसंद किया था, आपको खुश हैं बहुत कि आप आए हैं प्रोग्राम में, बहरहाल सवाल नहीं भेजा। रहीम आसिफ ने भी ये लिखा है, और हम कॉलर इस वक्त हमारे साथ समीन गुल हैं, समीन जान स्वात से। जी समीन जान, सलाम अलैकुम समीन जान। जी वालेकुम सलाम समीन जान।
आप
जमीन जान, आपकी आवाज, मेरा ख्याल है ये आज टेलीफोन में कुछ गड़बड़ है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही मुझे आवाज आपकी, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि आप सवाल सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम, आप दोबारा फोन की कोशिश कीजिए। और बहुत से लोगों ने फरमाइश की है एजाज साहब के हम भी रांझा का कोई गीत सुनवाएं, तो चलिए एक गीत सुनते हैं उसका।
मेरी माँ ते जोगी को माफी मांग लिया, मैं ते उधे पैरी पै जावांगी, मैं हमने सैदे नाल लेके जानी हूँ।
सलाम अलैकुम जोगी बादशाह, बड़ी खज्जल खुआरी दे बाद पता लगा कि तुसां ते डेरे काले बाग च लाए ने, ते असीं तुहानूं मरूदां दे बाग च लभदे फिरने सर।
कौन है तू ते इस बेमुराद नूं नाल क्यों लैके आया?
जोगी जी मैनूं होर बददुआ ना दिओ।
सब आप अभी सुनते हैं ये गीत या अब नहीं सुनते आप ये सारी चीजें?
जी
अब भी आप सुनते हैं अपनी पुरानी फिल्में देखते हैं और पुरानी फिल्मों के गाने सुनते हैं कभी?
नहीं मैं तो गाने सुनता हूँ, गाने अच्छे हैं।
हाँ, बहुत।
लेकिन पिक्चर बहुत कम देखता हूँ।
अच्छा आप अभी बता रहे थे कि आप गए हुए हैं एक फंक्शन में, गए थे कि कराची में इफ्तिताह हुआ था, छह उनको दोबारा से बनाया गया पुरानी फिल्मों को, तो कोई आपकी फिल्म शामिल है उसमें ये जो बनी है दोबारा?
डेफिनेटली शामिल होंगी, डेफिनेटली।
अच्छा ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा काम किया है ये कि उन फिल्मों को दोबारा से बनाना।
जी अच्छा, दोबारा पिक्चर तो नहीं बनी?
जी
दोबारा पिक्चर तो अटेम्प्ट नहीं की, जो पिक्चर मैंने बनाई है दो लोगों ने अटेम्प्ट की, कोशिश की थोड़ी बहुत, लेकिन वो हो नहीं सकता था, बन नहीं सकती थी ना वैसे।
अच्छा
तो उसकी वजह से नहीं, ना ये म्यूजिक बन सकता था, ना ये एक्टर अवेलेबल हो सकते थे, एंड ऑल दैट यू नो, तो बीच में ड्रॉप होती थी, अगर बनी हुई तो चली नहीं है कोई, इट्स वेरी मुश्किल है। जब तक इनके प्रिंट अवेलेबल है तो ये इसकी डिमांड रहेगी फिल्म की अपनी जगह पे ना
जी,
तो जब तक इससे बेहतर कोई पिक्चर नहीं बनती। इंडिया ने बड़ी ट्राई की, इंडिया ने दो फिल्में बनाई
जी
राजा के ऊपर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी।
तो एजाज साहब क्या वो फिल्में जो हैं ऑलरेडी जो बनी हुई हैं, जो हमें कभी कभी लोगों के अपने घरों में मौजूद हैं, जो कलेक्ट करते हैं फिल्म कलेक्टर्स हैं फिल्मों के, तो क्या इन फिल्मों को दोबारा अगर पिक्चर हाउस में दिखाया जाए, आप तो खुद थिएटर ओनर भी हैं ना, आपके फिल्म पिक्चर हाउसेज भी थे या नहीं, मुझे सही है?
जी हाँ, तो जो पिक्चर अभी देखे जो पिक्चर हाउस सारे तोड़ दिए गए, जमीने बेच दी गई, अब तो टोटली जो 450 सिनेमा में से हॉल 100 भी नहीं रहा
जी,
350 सिनेमा हॉल जो है वो गिरा दिए गए हैं,
جنرل ضیاء صاحب کے ٹائم پہ انہوں نے جب کہا کہ جی لڑکی کے سر پہ دوپٹہ ہوگا اور وہ کام کرے گی اینڈ آل دیٹ, آپ اسے رومانٹک سین بھی کر سکتے ہیں آل دیٹ, ایسا پیریڈ ان کی زندگی میں گزرا کہ ساری انڈسٹری فنش ہوگی, برباد ہوگی. نو اٹس آل دی انڈسٹری از فنش, کوئی رہا نہیں ہے, جو اسٹوڈیو ہیں سب بیڑا غرق ہو گیا سب کا, لوگ سارے گزر گئے ہیں, آگے یہی سے لڑکے نکلتے تھے ٹرینڈ ہوتے تھے, اسٹوڈیو سارے بند ہو گئے, اب ٹریننگ بند ہو گئی, نئی پوز اب کہاں سے لے کے آئیں گے, لوگ کہاں سے آئیں گے, ہے نہیں, نہ ٹیکنیکل لوگ ہیں, نہ رائٹر ہیں, نہ ڈائریکٹر ہیں, تو اس لیے یہ تو جسے کہتے ہیں نا, اس کو تو نئے سرے سے جب بھی شروع کرنا پڑے گا گریجولی, اینڈ اٹ ول ٹیک ٹائم, کیونکہ پہلے بھی بڑی ہم نے محنت کی 30-35 سال میں اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا پوری انڈسٹری کو,
جب بھی آپ جیسے لوگ آتے ہیں کوئی ڈیووٹیڈ, مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کیسے اتنی اچھی چیز کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے جانے دیا. اچھا اعجاز صاحب, آپ نے بڑی متنوع فلموں میں کام کیا, جیسے ہیر رانجھا میں تو ایک اپیل تھی, رومانٹک فلم تھی, لیکن شہید جو ہے ایک مختلف موضوع تھا نہیں, اور اسی طرح شہید فلم شہید اس میں بھی آپ تھے نا,
شہید میں تھا میں مسلم عزیز کے ساتھ,
اور وہ بھی بہت کامیاب ہوئی, تو اس کے کمال جو ہے یہ کوئی ٹیم آپ لوگوں کی کمال کی تھی یا یہ کہ اس زمانے میں جو فلم کے شائقین تھے,
اس میں بھی دیکھیں نا وہ کہانی بھی دیکھیں نا, آزادی کی کہانی تھی
جی,
جو شہید کی کہانی تھی آزادی کی کہانی تھی, سارے لوگ ینگ تھے اس میں, ڈائریکٹر بھی رائٹر بھی مائی سیلف ساری ٹیم کی ٹیم جو ہے, اس میں بھی یہی جذبہ تھا جس کے تحت وہ پکچر بنی, بلیک اینڈ وائٹ کی فلم تھی
جی,
بڑی کامیاب پکچر ہوئی. اس کے بعد ہم نے کلر میں پکچر بنائی, وہ بھی آپ دیکھیں آزادی کی فلم تھی, آزادی کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو جاتی,
کون سی فلم تھی
اس کے اوپر پکچر بنائی گئی, زرقا.
اچھا تو ریاض شاہد نے یہ بھی, شہید بھی ریاض شاہد نے بنائی تھی؟
نہیں, شہید لکھی تھی انہوں نے, بنائی نہیں تھی انہوں نے,
بہت اچھی
پکچر زرکا, یہ انہوں نے لکھی بھی اور بنائی بھی انہوں نے, میں نے اس پہ کام کیا تھا نیلو کے ساتھ.
جی جی بالکل, بہت اچھی فلم تھی,
یہ بڑی کامیاب پکچر تھی, کلر کی پکچر تھی یہ.
تو چلیے ہم اس میں سنتے ہیں شہید کا ایک گیت سنتے ہیں, فیض احمد فیض کا کلام ہے اور آپ پہ فلمایا گیا تھا, تو تھوڑا سا اپنے سننے والوں کو بھی سنائے کہ کتنی سنجیدہ چیزیں بنا کرتی تھیں پاکستان کی انڈسٹری میں.
جی ہاں جی ہاں,
اچھا کلام ہے. اچھا میں تو بلکہ سنتے سوچ رہی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں کس سے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں, تو شاید ہمیں فلمی صنعت کے لیے بھی یہ سوال کس سے پوچھیں, یہ سوال مطلب کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح تباہ کر دیا گیا ایک پوری صنعت کو اتنی بڑی. تو جو آپ کے سینما گھر تھے وہ بھی اب ان میں کمرشل کوئی پلازا بن گیا؟
جی ہاں, ٹوٹ گئے سارے سینما, توڑ دیے گئے, فلمیں بند نہیں, بند ہوگی تو کیا چاہتے اس میں,
نہیں ٹھیک ہے ظاہر ہے بالکل,
ساری انڈسٹری جو ہے نا کرپل ہوگی, رومانٹک پکچر نہیں بنی, گانا گا رہی ہے ہیرو وہ ایک سائڈ پہ چل رہی ہے, ہیرو جو ہے گن لے کے دوسرے چل رہا ہے, ستار رہی وہ وزیرا وہ ٹھیکے دارا وہ تھانے دارا, اس طرح کی پکچر بنانی شروع کر دی, کیا کرتے وہ سبجیکٹ کہاں سے لاتے؟
بالکل
رومانٹک پکچر بنا نہیں سکتے, کوئی پرابلم دکھا نہیں سکتے, لڑکی لڑکا مل نہیں سکتے, تو اس طرح کی پکچریں پھر بنی تھی نا. تو اس دور میں پھر جتنی پکچر دس سال برائی کے اوپر بنتی رہی, مونچھے لگائی ہیں بڑی بڑی اور جگیردارا جتنی بھی خون خون و خون خرابہ ہو سکتا تھا پھر وہ لوگ دکھانے لگے.
صاحب آپ نے سب سے زیادہ کون سی خونخوار فلم ہے جس میں آپ نے کام کیا, کوئی ایسی ہے خونخوار فلم؟
نہیں میں نے نہیں کوشش کی کہ کسی خونخوار فکر میں کام.
اچھا
نہیں میرا یہ ٹیمپرامنٹ نہیں تھا, میں جلدی مشکل ہوتا اگر میں یہ سوچتا, لیکن افسوس ضرور ہوا کہ اگر کسی نے کہا تو میں نے کہا کہ آئی ایم سوری آئی کانٹ ڈو دیٹ, سمجھے نا. پر لوگوں نے پھر کام جو جن کو پہلے کام نہیں ملتا تھا ان کو کام لگا ملنے لگا اور وہ پکچر بنانے لگے اور دیکھنے لگے. ٹھیک ہے تو چلیے کچھ عرصہ سے یہ ہوا کہ انڈسٹری ساری بیٹھ گئی.
بالکل. اور آپ کی مونچھیں ہمیشہ اوریجنل رہی, مطلب آپ کی جو ذاتی مونچھیں تھیں آپ نے کبھی بڑھایا نہیں ان کو. آپ نے کہا نا بڑی بڑی مونچھیں لگا کے, تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی تو ہمیشہ ذاتی مونچھیں رہی نا, آپ نے کبھی مونچھیں بڑھائی نہیں اس سے زیادہ.
جی جی بالکل ایگزیکٹلی وہی کافی تھی میرے لیے.
اچھا ہمارے ایک خوددار سے کالر ہیں بلوچستان سے, عبد الوحید صاحب. جی عبد الوحید السلام علیکم. عبد الوحید میرا خیال ان کی لائن, یہ بےچارے بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اور کامران ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی کامران السلام علیکم. کامران اچھا آج ہی وہ ہمارے ٹیلی فون لائن سے کچھ خراب ہیں. اچھا اب آپ بتائیے کہ یہ ظاہر ہے آپ نے جو نام لیے احمد راہی, ریاض شاہد اور یہ سارے کمال کے لوگوں کے ساتھ, آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت کون سی تھی فلم انڈسٹری میں جس بہت ایڈمائر جسے آپ کرتے ہیں, ایسی کون سی شخصیت ہے؟
اس میں دیکھنا جو اب ڈائریکٹر تھے مسعود پرویز صاحب.
جی
انہوں نے اب ایک پکچر تھی پنجابی کی, اپنا ایک تو یہ تھی نا ہیرا جان, ایک اور پکچر تھی
مرزا جٹ.
جی
مرزا جٹ
وائٹ کی فلم تھی.
اچھا
نام نہیں بھی آ رہا, وہ بھی رومانٹک مرزا جٹ. مرزا جٹ
جی
مرزا صاحبہ کے نام پہ نا, مرزا صاحبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا.
جی ہاں
یہ بھی لو اسٹوری تھی مرزا صاحبہ کی, تو مرزا جٹ کے نام سے وہ پکچر بنائی گئی تھی.
اچھا
وہ بلیک اینڈ وائٹ کی پکچر تھی اور مسعود پرویز صاحب بھی اس کے ڈائریکٹر تھے. مسعود پرویز صاحب تھے وہ انڈیا سے شفٹ ہو کے آئے تھے یہاں پہ.
جی
انہوں نے ماسٹر کیا ہوا تھا, سائنس تھے, قابل لوگ تھے. خورشید انور صاحب انہوں نے ماسٹر کیا ہوا تھا.
جی
پڑھے لکھے لوگ تھے سارے نا.
جی جی
انہوں نے پھر ڈبلیو احمد صاحب پڑھے لکھے تھے, یہ سارے لوگ ہم لوگ بھی ہم نے بھی جوائن کیا ان لوگوں کو. سارا نقشہ ہی بدل گیا نا فلم انڈسٹری کا, جو پہلے ہوا کرتا تھا زمانے میں ان پڑھ لوگ موسٹلی جاتے تھے, پڑھے لکھے کبھی جاتے تھے.
جی
اور ایک وقت تھا وہ بھی, چونکہ یہ پارٹیشن ہوا اس لیے ساری پکچریں پھر یہاں بھی بننے لگیں, سارے لوگ پڑھے لکھے آ گئے, کافی انویسٹمنٹ ہوئی, کافی کریٹو کام ہوا.
بالکل. تو اعجاز صاحب آپ کے اپنے گھر میں یا فیملی میں کیا ریئیکشن ہوا جب آپ نے فلموں میں جانے کا سوچا؟
جب میں نے فلموں میں کام شروع کیا
جی
میں نے بتایا نا آپ کو, جیسے میری پہلی پکچر تھی.
نہیں نہیں وہ تو آپ نے فلم کے بارے بتایا لیکن آپ کے خاندان کا کیا
بات, اصل بات تو وہی آئی نا. جب وہ پکچر جب دیکھی چل گئی پکچر تو میں تو گیا ہی نہیں اپنا, میں پڑھتا تھا جالسن کا لاہور میں اور پیرنٹ میرے جیل میں رہتے تھے, تو لوگوں نے انہیں بتایا اس طرح جو ہے وہ دیکھا ہم نے. پھر انہوں نے مجھے فون کیا, میں گیا, پھر میں نے ایکسپلین کیا سر میں کہ آپ پکچر دیکھیں, اس کے بعد پھر مجھے جو آپ نے کہنا کہ اگر آپ کہیں گے تو فردر میں آگے کام کروں, ادروائز آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. خیر دی ساری مووی اٹ واز ویری ایموشنل مووی یو نو, سمجھے نا.
جی
تو خیر پکچر بڑی کامیاب ہوئی, لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا, مجھے اجازت مل گئی کام کرنے کی.
اچھا لکی ہیں آپ کہ آپ کو اتنی آسانی سے مل گئی. ہم آپ نے بات کی مرزا جٹ کی, تو چلیے تھوڑا سا اپنے سننے والوں کو ایک جھلک اس فلم کی سنوا دیتے ہیں تاکہ انہیں بھی اندازہ ہم کس فلم کی بات کر رہے ہیں.
معاف کر دے مجھے, وہ ایک ہی کیا کر رہا ہے, میں ذرا بکریاں نسا رہا تھا, ਔਰ ਰੱਖੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਠੇ ਵਾਲੀ ਪੇੜ ਫੜੀ ਜੇ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਿਆ ਮਿਰਜ਼ਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ
ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਮੀਆਂ ਜੀ
ਓਏ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਦਾ ਧੀਆ ਮਾਖਾ ਚੰਦਰ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦਿਆਂ
ਮਿਰਜ਼ਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ
ਮੀਆਂ ਜੀ
ਜਾ ਜਵਾਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ
ਜਾ ਏ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ
ਤੇ ਖੁੰਨੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਦੇ ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧਾ ਲਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਆਏ ਸਨ ਤੀਰ ਅੱਜ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ
ਉਹ ਪੀਰ
ਜਾ ਕੱਲੋ ਸ਼ਮੀਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ
अच्छा हीरोइनें तो आपके साथ तकरीबन बेशुमार थी पूरी लिस्ट में देख रही थी एक तो इसमें आपकी पसंदीदा कौन सी थी जिनके साथ आपने काम किया
जी
जितनी जो जी। उस जमाने की हीरोइंस थी मशहूर उनमें से आपकी पसंदीदा कौन सी हीरोइन थी
मैंने सब हीरोइनों के साथ काम किया है एक्चुअली
हाँ तकरीबन
बेशुमार जितनी भी हीरोइन थी ना पाकिस्तान में सबके साथ मैंने काम किया
अच्छा
तो अच्छी थी It all depends, you know, क्या पर रोल क्या है उसका रोल क्या है कैसी पिक्चर है कौन बना रहा है तो आदमी सेलेक्टिव होता है शुरू में देखता है कि प्रॉपर फिल्म में काम किया जाए ऑल दैट तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस रही जो मेरे साथ काम करती रही
लेकिन ये कहते हैं ना जैसे आमतौर से कहा जाता है कि जोड़ी बड़ी अच्छी उनकी थी तो आपकी कौन सी जोड़ी थी जो बहुत अच्छी समझी जाए
जोड़ी वो लोगों का पहले रुझान हो जाता है ना कोई पिक्चर ऐसे हिट होती है फिर लोग देखना चाहते हैं उनको जोड़ी से लोग बना लेते हैं ना
तो आपके साथ किसके बनाए गए
मैंने जितनी भी हीरो थी ना मेरे सबके साथ बड़ी अच्छी जोड़ी रही
अच्छा
ठीक है
ये कमाल किसका था आपका हीरोइन या हीरोइन का जोड़ी अच्छी रही आपके साथ अच्छा हमारे दो कॉलर्स और हैं एक तो समीन जान आ गए वापस आपका थोड़ा सा फोन उसका सम शायद थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत हेलो
बाजी सलाम अलैकुम
जी समीन जान
बाजी सलाम अलैकुम
वालेकुम सलाम समीन जान
बाजी दोबारा आया हूँ अल्लाह करके करके कॉल मिला है मैं मेरी तरफ से बाजी आपको नीडो बहन को और इजाज़ दुरानी साहब को पहले सलाम और उसके बाद जो है ना
तुम्हें
पाकिस्तान दिल की गहराइयों से मुबारक और मेरे कजन भी मेरे साथ भेजे मुबारक दे वो भी आर्मी वाले वो भी आप लोगों को दुआ सलाम कहते हैं
आपको भी बहुत मुबारक हो यौम पाकिस्तान सब लोगों को पाकिस्तान में
इजाज़ साहब से ये सवाल है दुरानी साहब से क्या ऐसे तो नहीं कि 10 पुश्तों या 20 पुश्तों में ये पठान निकले
क्या मतलब यानी इनके अच्छा ये पूछना चाहते हैं कि आप यानी आपका ताल्लुक पश्तून खानदान से है क्या इजाज़ साहब
हाँ
जी इनका 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 सवाल ये है कि क्या आपका ताल्लुक पश्तून घराने से है किसी से
जी मेरे जो है अब काबुल से माइग्रेट करके आए थे तो दैट्स व्हाई आई एम दुरानी दुरानी पठान
वैसे आप पश्तो बोलते हैं या नहीं
फारसी बोलते थे मेरे जो बुजुर्ग थे ना
जी जी जी
फारसी बोलते थे पश्तो नहीं बोलते थे
अच्छा अच्छा अभी भी ये है ना बहुत से लोग दरी जो है वो भी फारसी की एक वेरिएशन के साथ थोड़ी
हाँ नहीं अब उसके बाद काफी जा रहा है वो फारसी जो है जाती रही
हाँ
उर्दू बोलना शुरू किया पंजाबी बोलना शुरू किया
असल में अब तो मेरे ख्याल हर जगह अब देखिए आप ये कितने दूर दराज इलाकों से टेलीफोन आ रहे हैं लेकिन ये लोग इतनी साफ उर्दू बोलते हैं तो इसका मतलब है उर्दू हर जगह बोली और समझी जाती है पाकिस्तान में और मैं नेपाल वगैरह जहाँ भी गई मैंने देखा उसे हिंदी कहते हैं लेकिन वो स्पोकन जबान तो वही होती है जो उर्दू है
जी
अच्छा
आपने देखा होगा ना
जी
आपने देखा है कि ये जितने भी लोग सवाल तो आप यहाँ कर रहे हैं ना इनको
जी
जितने सवाल जवाब यहाँ से लोग आपको कर रहे हैं ना
नहीं नहीं ये सब वहाँ पे ही है ये यहाँ पे कोई भी नहीं है ये हमारे पाकिस्तान के लिए टोल फ्री नंबर है और इंडिया से भी
मैं वही कह रहा हूँ ना हाँ वही
जी
वही ना पाकिस्तान से कर रहे हैं ना
जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल
हाँ
तो अच्छा आपकी फिल्म दोस्ती का ये गाना बड़ा मशहूर हुआ था चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे तो चलिए सुनने वाले खुश हो जाएंगे उनको वो गाना सुनवाते हैं चिट्ठी आपको भी थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिल जाएगा
चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख
अच्छा एक और हमारे कॉलर हैं शौकत अली अंजुम डारा वाला से। जी शौकत अली अंजुम, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम भाई।
पहले तो मैं तमाम दुनिया में पाकिस्तानियों को हमें 23 मार्च के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी मैं एजाज अहमद साहब से, एजाज दुरानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपने हमारी सकाफत को जिंदा रखा, ये बड़ी बात है। तो अब फिल्म का इन्हतात हो रहा है, तो आप आजकल क्या कर रहे हैं और कौन सी आपकी मसरूफियत है? दूसरी बात ये है कि हीर रांझा का एक गाना है, तेरी खैर होवे डोली चढ़ जाने वाली है, ये गाना अगर सुना दिया जाए तो मैं आपका बहुत ममनून हूँ। आप शुक्रिया मैडम, अल्लाह हाफिज़।
एजाज साहब सुना दें गाना क्या? मेरा ख्याल ये रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं लेकिन इनको ये
आप सुना लें, आपके पास गाना है तो जरूर सुनाएं आप।
मैं, मेरा ख्याल ये नहीं है लेकिन हम इनको कोई और सुनवा देंगे। लेकिन ये बताइए अब आप, ये कई लोगों ने फेसबुक पे पूछा है कि आप आजकल फिल्मों से या किसी किस्म की प्रोडक्शन से, एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं।
ऐसा है कि जहाँ तक फिल्म का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा तो सारा कुछ खत्म हो गया, ऑफिस बंद हो गए, नई प्रोडक्शन बंद हो गई, पुरानी जितनी फिल्में थी वो खत्म हो गई, टेलीविजन में लोग चलाते रहे एंड ऑल दैट, उनके प्रिंट बनाते रहे चलाते रहे उसको, तो ये सारा उसके आगे नई पिक्चरें बने नहीं, गिनती की चंद नई पिक्चरें ऐसे बनी है, उन लोगों को पता नहीं फिल्म होती क्या है लेकिन वो बनाते रहे हैं, वो भी सारा खत्म हो गया सिलसिला। आजकल तो इंडिया से पिक्चर लाते हैं आने की कोशिश करते हैं, लोगों ने अभी चली नहीं है क्योंकि वो खासे पैसे इनसे डिमांड करते हैं, तो नुकसान भी होता है फायदा भी होता है, तो ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती। हमारी जो सारी एफर्ट थी वो सारी रायगा चली गई, बर्बाद हो गई। अब खास है कि ये इंडस्ट्री जो है ना दोबारा नए सिरे से कुछ इसका किया जाए, लेकिन हालात ही मुल्क के इस किस्म के हैं कि ना तो वहाँ आपको पता बची नहीं है, हालात ही इस किस्म के हैं तो उसमें क्या हो सकता है।
वैसे एजाज
अभी तो स्टूडियो बना के बिजी नहीं है, बिजी नहीं है, बड़े हालात खराब है।
सही, वैसे जैसा मुझे हैरत ये होती है। हाँ बिल्कुल, असल में लोग टेलीविजन, अब तो प्रोग्राम रेडियो को लोग इसलिए बहुत ज़्यादा सुनने लगे हैं क्योंकि बिजली ना होने की वजह से बैटरी पे वो ज़्यादातर रेडियो ही सुन सकते हैं, ये अजीब गरीब बात है। अच्छा अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अपनी तमाम फिल्मों में से आप मुंतखब कीजिए आपकी पसंदीदा तरीन फिल्म कौन सी है, तो आप कौन सी कहेंगे?
पिक्चर मैंने बहुत की है, अब उसमें किस पिक्चर को कहूँ कि आप मेरी पसंदीदा पिक्चर है?
नहीं चाहे वो मकबूल ना हुई हो लेकिन वो आपकी पसंदीदा हो वो बताइए आप हमें।
मेरी एक पिक्चर थी जिसमें मैंने विलन का काम किया था।
अच्छा,
एक फिल्म थी ब्लैक एंड व्हाइट की, और उसे एक्टर भी थे।
अच्छा,
मेरी उस फिल्म में वो रोल जो था मैंने किया उसमें वो मुझे पसंद था।
क्या नाम क्या था फिल्म का?
डिफरेंट कैरेक्टर ऑल टुगेदर। जी
फिल्म का नाम क्या था?
नाम मुझे अब याद नहीं रहा उसका।
अच्छा, लेकिन वो व्हाइट फिल्म है जिसमें आपने नेगेटिव रोल किया है, कोई वो एक ही फिल्म है विलेन का जिसमें किया आपने? अच्छा, आपकी एक फिल्म थी गहरा दाग, बहन भाई,
उसका नाम था बहन भाई।
अच्छा अच्छा अच्छा, वो मेरा ख्याल है सुनने वाले अब जरूर देखेंगे, लोगों को अब ये यूट्यूब वगैरह की वजह से ये आसानी है कि वो आसानी से फिल्में देख लेते हैं पाकिस्तान या इंडिया की पुरानी। अच्छा चलिए, आपकी एक और बहुत पुरानी फिल्म थी गहरा दाग, उसमें मेहदी हसन की बहुत ही अच्छी सी एक गीत है।
वो भी शुरू की पिक्चर में अच्छी फिल्म थी।
हाँ,
फिल्म थी सलमा, वो भी अच्छी थी।
अच्छा, वैसे एजाज साहब आप में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, ये मैं देख रही थी आपका ताजा इंटरव्यू, तो ये कैसे आपको ये ये कॉम्प्लीमेंट आपको वैसे काफी मिलता होगा? नहीं
जी,
ये कॉम्प्लीमेंट आपको काफी मिलता होगा मुझे यकीन है।
जी हाँ जी हाँ जी हाँ,
तो ایسا لگ رہا ہے میں فیل کر سکتی ہوں کہ آپ بلش کر رہے ہیں, تو چلیے ہم وہ گیت سنتے ہیں مہدی حسن والا.
گر تم حسین ہوتے, گر تم حسین ہوتے, ہم مہربان ہوتے, گر تم حسین ہوتے, ہم مہربان ہوتے, سرکار چپ نہ ہوتے, سرکار چپ نہ ہوتے, جو قدر دان ہوتے, گر تم حسین ہوتے. آپس میں ملن جائیں, آپس میں ملن جائیں, تکرار کرتے کرتے اقرار کر نہ بیٹھو, انکار کرتے کرتے یہ آس گل نہ ہوتی, یہ آس گل نہ ہوتی, ہم بے زبان نہ ہوتے, گر تم حسین نہ ہوتے.
بہت ہی خوبصورت گایا بھی, بہت اچھا رہی, فلم میں لگ بھی بہت اچھا رہا تھا گانا. تو اعجاز صاحب, میں آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ نے ہمیں وقت دیا اپنی پارٹی میں سے وقت نکال کے, اور کھلے میدان میں آپ بیٹھے ہیں. خوش قسمتی ہے ہماری کہ بارش نہیں ہو رہی. اور آپ تو اتنے آپ کے چاہنے والے ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں اپنے تمام جو اتنے لوگوں نے فون کیا, اور بہت سے لوگ جو فون کرنا چاہتے تھے مگر ان کو لائن نہیں مل سکی.
میں سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے, یہ بڑی خوشی ہے میرے لیے.
مطلب جب لوگ یاد رکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے. ہمارے میرے ساتھ میری کلیگ بیٹھی ہیں مدثرہ, وہ تو بہت خوش ہوئی, کہنے آج تو پروگرام بڑا سج جائے گا, میں اعجاز صاحب آ رہے ہیں پروگرام میں. تو مجھے خوشی ہوئی کہ سننے والوں کی طرف سے بھی اتنا اچھا رسپانس آیا ہے. اس کے علاوہ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ہماری پروڈیوسر نیلوفر مغل تھیں, گلین وینکیریو ہمارے انجینئر تھے. اور چلیے آخر میں ہم آپ ہی کی ایک اور فلم کا گانا سناتے ہیں, اور ہمیں آپ بھی لطف اندوز ہوئیے, ہم بھی, اور ہماری سب کی طرف سے آپ کا شکریہ, اور خدا حافظ.
اے جانے من جانے بہارا رش کے چمن.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. جانے من جانے بہار.